एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं, एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ गुजरे जमाने की कहानी नहीं है, बल्कि यूं कहें कि आज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। जॉन कीगन की मशहूर किताब द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब प्रथम विश्व युद्ध।
बिल्कुल, और ये किताब आप देखेंगे ये इसलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं है। ये किताब असल में गहराई से ये समझने की कोशिश करती है कि कैसे 20वीं सदी की शुरुआत का यूरोप, जो उस वक्त आप सोचिए दुनिया का सबसे अमीर, सबसे जुड़ावा मॉडर्न महाद्वीप माना जाता था, वो खुद को इतिहास के सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक में झोंक देता है।
हाँ, ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है।
और कीगन का सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला तर्क यही है कि ये महायुद्ध जिसमें करोड़ों जाने गई, वो होना ही था, ऐसा नहीं था। ये एक दुखद और टाली जा सकने वाली त्रासदी थी,
और यही बात इसे आज भी इतनी जरूरी बना देती है ना। ये हमें उन गलतियों, उन कूटनीतिक चूकों, संवाद की कमियों और सबसे बढ़कर उस तरह की सोच के बारे में बताती है जो आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव और टकराव पैदा कर सकते हैं। ये दिखाती है कि कैसे, मतलब, पुरानी सैन्य सोच और नई तकनीक का टकराव कितना विनाशकारी हो सकता है।
बिल्कुल सही। तो चलिए फिर जॉन कीगन के नजरिए से इस महायुद्ध की कहानी और उसके जो सबक हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ जरूर, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले लेखक के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है मेरे ख्याल से। जॉन कीगन।
हाँ सर, जॉन कीगन 1934 से 2012 वो 20वीं सदी के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली सैन्य इतिहासकारों में गिने जाते हैं। एक ब्रिटिश एकेडमिक थे, लेक्चरर थे, पत्रकार भी थे, और उनकी युद्ध की समझ सिर्फ किताबी नहीं थी या नक्शों तक ही सीमित नहीं थी।
हाँ, और यही बात उन्हें खास बनाती है। सही कहा आपने।
उन्होंने लगभग 30 सालों तक रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में पढ़ाया। ये वो जगह है जहां ब्रिटिश सेना के भावी अफसर ट्रेनिंग लेते हैं, तो इससे उन्हें फौज की जो अंदरूनी दुनिया है, सैनिकों का मनोविज्ञान, जमीनी हकीकत, उसकी गहरी समझ मिली।
बिल्कुल।
और उनकी सबसे मशहूर किताब द फेस ऑफ बैटल, उसने तो जैसे सैन्य इतिहास लिखने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने इतिहास को सिर्फ जनरलों की रणनीतियों से हटाकर आम सैनिक के अनुभव पर फोकस किया, उसका डर, उसका भ्रम, उसका साहस। इसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच।
अच्छा,
मतलब नीचे से ऊपर देखना। हाँ, और इसी मानवीय नजरिए को वो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लेकर आते हैं। वो जैसे जर्मनी के जटिल श्लीफन प्लान का विश्लेषण करते हैं, उतनी ही बारीकी से, उतनी ही संवेदनशीलता से वो खाइयों में लड़ रहे एक आम सैनिक की हालत भी बयान करते हैं। वो बड़ी रणनीतिक योजनाओं और उनकी जो भारी मानवीय कीमत है उसके बीच के फासले को पाटते हैं। इससे इतिहास सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं रहता, एक जीती जागती दर्दनाक कहानी बन जाता है।
ये बहुत जरूरी बात है। अब आते हैं किताब पर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत ही डिटेल्ड, लेकिन फिर भी आम पाठक के लिए आसानी से समझ आने वाली भाषा में लिखा गया इतिहास है। कीगन का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ,
सही,
बल्कि ये समझाना है कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। वो इस युद्ध से जुड़े कई मिथकों को तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, खासकर इस विचार को कि ये युद्ध तो होके ही रहना था।
बिल्कुल। किताब हमें 1914 की गर्मियों के यूरोप में ले जाती है। ऊपर से देखें तो सब शांत लगता है, तरक्की हो रही है, देश एक दूसरे से व्यापार, संस्कृति, इन सबसे जुड़े हैं, लेकिन सतह के नीचे वो एक अलग कहानी है। शाही ताकतों की आपसी जलन, व्यापारिक मुकाबला, देशों के बीच बने सख्त फौजी गठबंधन, सीक्रेट वॉर प्लान्स और राष्ट्रवाद का उबलता हुआ जुनून। कीगन दिखाते हैं कि कैसे ये समृद्ध दिखने वाला समाज दरअसल एक बारूद के ढेर पर बैठा था।
और फिर आता है वो जुलाई संकट, आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या के बाद का वो एक महीना, जब एक के बाद एक गलत कूटनीतिक फैसले लिए गए, अल्टीमेटम दिए गए और सेनाओं को लड़ने के लिए तैयार किया गया। कीगन इसे किसी सोची समझी साजिश की तरह नहीं देखते, बल्कि नेताओं की गलतफहमियों, संवाद की भयानक कमी और कूटनीतिक नाकामी की एक दुखद चेन के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि यूरोपीय नेता जैसे नींद में चल रहे थे, स्लीप वॉकर्स, बिना ये समझे कि उनके कदम दुनिया को किस खाई की तरफ ले जा रहे हैं।
हाँ, और एक बार जब वो मिलिट्री मशीनरी, वो सैन्य तंत्र हरकत में आ गया, तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो गया। यहीं पर कीगन के विश्लेषण का एक बहुत अहम हिस्सा आता है, युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और फिर वो कैसे फैला। चलिए जरा युद्ध के जो मुख्य कारण हैं और कीगन उनको कैसे देखते हैं उस पर बात करते हैं।
हाँ बिल्कुल, तो सबसे पहले बात करते हैं युद्ध की शुरुआत की। कीगन 1914 के यूरोप की तस्वीर खींचते हैं। दो बड़े खेमे बने हुए थे, एक तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी यानी केंद्रीय शक्तियां, दूसरी तरफ फ्रांस, रूस और ब्रिटेन यानी ट्रिपल एंटेंट। तनाव तो पहले से था ही, लेकिन कीगन खास तौर पर मिलिट्री प्लान्स पर ध्यान दिलाते हैं, खासकर जर्मनी का वो श्लीफन प्लान।
हाँ, ये श्लीफन प्लान ये क्या था असल में? ये जर्मनी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। आइडिया ये था कि बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर तेजी से हमला करके उसे फटाफट हरा दिया जाए और फिर अपनी पूरी ताकत रूस के खिलाफ झोंक दी जाए। कीगन का तर्क यह है कि ये योजना इतनी ज्यादा टाइम बाउंड और कठोर थी कि इसने डिप्लोमेसी के लिए मतलब कूटनीति के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। जैसे ही लामबंदी शुरू हुई वो घड़ी की सुई टिक टिक करने लगी और युद्ध लगभग तय हो गया।
और क्या ये प्लान कामयाब हो सकता था? कीगन क्या कहते हैं इस बारे में?
कीगन दिखाते हैं कि ये शुरू से ही बहुत जोखिम भरा था, कई गलत अनुमानों पर आधारित था। बेल्जियम का प्रतिरोध, ब्रिटिश दखल, रूस की तेजी, इन सबको कम आंका गया था।
अच्छा।
और जब जुलाई संकट आया तो इसी प्लान की वजह से जर्मनी ने तेजी से कदम उठाए जिससे संकट और बढ़ गया। फिर शुरू हुआ युद्ध का पहला चरण, 1914 की वो शुरुआती लड़ाइयां। जर्मनी ने बेल्जियम और फ्रांस पर हमला किया। शुरू में उन्हें कामयाबी भी मिली, लेकिन फिर हुई मारने की पहली लड़ाई। यहां फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं ने जैसे तैसे जर्मन बढ़त को पेरिस के पास रोक दिया। कीगन इसे मारने का चमत्कार कहते हैं क्योंकि इसने श्लीफन प्लान को फेल कर दिया और जर्मनी की जो जल्दी जीत की उम्मीदें थी उन पर पानी फेर दिया।
और इसी नाकामी के बाद शुरू हुई वो चीज जो प्रथम विश्व युद्ध का सिंबल बन गई, पश्चिमी मोर्चे पर खाइयों का युद्ध, ट्रेंच वॉरफेयर। दोनों सेनाएं एक दूसरे को फ्लैंक करने की कोशिश में उत्तर की तरफ बढ़ती गई और जल्द ही स्विट्जरलैंड से लेकर इंग्लिश चैनल तक खाइयों की एक अटूट लाइन बन गई। यहीं से युद्ध का कैरेक्टर पूरी तरह बदल गया। जो पहले एक मूवमेंट का युद्ध था वो अब एक स्थिर, थका देने वाले और बहुत ही खूनी गतिरोध में बदल गया, स्टेलमेट। ये गतिरोध क्यों पैदा हुआ, इसका कीगन क्या विश्लेषण करते हैं?
मुख्य कारण था रक्षात्मक तकनीक का आक्रमण रणनीति पर भारी पड़ना। आप सोचिए, कांटेदार तार, मशीन गन और तोपखाने के सामने खुले मैदान में सैनिकों को हमला करना कितना आत्मघाती रहा होगा। वो नोमैंस लैंड, दो खाइयों के बीच की जमीन, वो तो मौत का इलाका बन गई थी।
और कीगन खाइयों के अंदर की जिंदगी का भी बहुत भयानक चित्र खींचते हैं। कीचड़, चूहे, बीमारियां, लगातार होती गोलाबारी का डर और वो मनोवैज्ञानिक आतंक। और इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए दोनों पक्षों ने अगले 3 साल मतलब 1915 से 1917 तक भयानक हमले किए, लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन नतीजा
कुछ खास नहीं निकला।
कीगन इन लड़ाइयों का वर्णन करते हुए जनरल्स की सोच और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करते हैं।
बिल्कुल, जैसे 1916 की वर्दन और सोम्य की लड़ाइयां, ये बहुत ही भयानक थी। वर्दन में जर्मनी ने फ्रांस को खून बहाकर सफेद करने की नीति अपनाई, मतलब दुश्मन पर इतने हमले करो, इतने सैनिक मारो कि वो थककर हार मान ले, कितना अमानवीय।
और सोम की लड़ाई, ये तो ब्रिटिश सेना के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। पहले ही दिन हजारों सैनिक मारे गए। कीगन के लिए सोम सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये वो पॉइंट था जहां युद्ध का रोमांस मर गया और उसकी जगह बड़े पैमाने पर हत्या की गंभीर औद्योगिक वास्तविकता ने ले ली। ये दिखाता है कि कैसे युद्ध अब वीरता की कहानी नहीं रहा बल्कि औद्योगिक पैमाने पर मौत का उत्पादन बन चुका था। पुरानी रणनीतियां पूरी तरह बेकार हो चुकी थी।
सही कहा। और यह स्थिति 1917 तक बनी रही, लेकिन फिर दो बड़ी घटनाओं ने युद्ध का रुख मोड़ा। पहली, रूस में क्रांति हुई और वो युद्ध से हट गया, जारशाही खत्म हो गई। और दूसरी, जर्मनी की जो पनडुब्बी युद्ध नीति थी, यू बोट वॉरफेयर, जिसने अमेरिकी जहाजों को भी निशाना बनाया, उसके जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र देशों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया।
अच्छा, तो अमेरिका का आना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
बहुत बड़ा। रूस के हटने से जर्मनी को कुछ राहत जरूर मिली। उसने 1918 के बसंत में पश्चिमी मोर्चे पर एक आखिरी बड़ा हमला भी किया, जिसे काइजर श्लाख्त या कैसर की लड़ाई कहा गया। इसमें नई स्टॉर्म ट्रूपर रणनीति का इस्तेमाल हुआ। और जर्मन सेना एक बार फिर पेरिस के काफी करीब पहुंच गई थी। ऐसा लगा कि शायद वो जीत जाएंगे,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
नहीं, ये उनकी आखिरी कोशिश थी। जर्मन सेना बुरी तरह थक चुकी थी, रसद कम थी, नुकसान बहुत हो चुका था, और दूसरी तरफ ताजा दम अमेरिकी सैनिक बड़ी संख्या में फ्रांस पहुंच रहे थे।
तो पासा पलट गया।
हाँ, 1918 की गर्मियों में पासा पूरी तरह पलट गया। मित्र देशों ने एकजुट होकर नई रणनीति के साथ, जिसमें टैंक, हवाई जहाज और तोपखाने का मिला जुला इस्तेमाल था, 100 दिन का आक्रमण 100 डेज ऑफेंसिव शुरू किया। इसने जर्मन सेना की कमर तोड़ दी। फिर एक एक करके जर्मनी के साथी देश बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी हार मानने लगे। आखिर में युद्ध के मैदान में हार और देश के अंदर क्रांति के डर से जर्मन हाई कमांड ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिए। लड़ाई खत्म हुई।
लड़ाई खत्म हुई, लेकिन कीगन यहां रुकते नहीं है, है ना? वो दिखाते हैं कि युद्ध का अंत भी उतना ही दुखद था जितना युद्ध खुद। लाखों मौतें, एक तबाह महाद्वीप, 4 बड़े साम्राज्यों का अंत। और जो शांति संधि हुई, वर्साई की संधि, वो इतनी कठोर थी, उसने जर्मनी में कड़वाहट और अपमान की भावना पैदा की।
बिल्कुल, कीगन मानते हैं कि इसी भावना ने 20 साल बाद एक और उससे भी भयानक विश्व युद्ध की जमीन तैयार की। उनका एक अहम विचार है कि युद्ध विराम बराबरी वालों के बीच बातचीत से हुई शांति नहीं थी, बल्कि विजेताओं द्वारा थोपा गया आत्मसमर्पण था। इसकी शर्तों ने जर्मनी में जो जख्म दिए, वो दूसरे विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण बने। ये बहुत गंभीर बात है।
तो कुल मिलाकर कीगन की किताब से क्या बड़े संदेश या सबक मिलते हैं, अगर हमें कुछ पॉइंट्स में समेटना हो?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी शायद यही है कि ये युद्ध अनावश्यक था। कीगन बार बार इस पर जोर देते हैं। ये किसी एक देश की बुरी नीयत से ज्यादा नेताओं की सामूहिक नाकामी, गलत अनुमानों, कठोर सैन्य योजनाओं और हाँ, संवाद की कमी का नतीजा था।
दूसरा बड़ा सबक है पुरानी सोच और नई तकनीक का टकराव। ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। जनरल 19वीं सदी की लड़ाइयों के हिसाब से सोच रहे थे, जबकि मैदान में 20वीं सदी के हथियार थे, मशीन गन, भारी तोपें, जहरीली गैस। इस बेमेल ने भयानक तबाही मचाई। और ये आज भी कितना प्रासंगिक है, नहीं? जब तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है, क्या हमारी सोच, हमारी नीतियां उसके साथ कदम मिला पा रही हैं?
बिल्कुल सही सवाल है। तीसरा, युद्ध की मानवीय कीमत। कीगन आंकड़ों से आगे जाकर उस डर, उस दर्द, उस निराशा को महसूस कराते हैं जो खाइयों में लड़ने वाले हर सैनिक ने झेली होगी। वो हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध सिर्फ नक्शों पर लकीरें खींचना नहीं होता, इसकी असली कीमत इंसान चुकाते हैं, लाखों जिंदगियां।
इसने भविष्य के कई संघर्षों के बीज बो दिए। इसने लोगों का दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल दिया। वो जो 19वीं सदी का आशावाद था, वो खत्म हो गया।
हाँ, तो इन सबकों को हम आज कैसे देख सकते हैं? आज की दुनिया में इनकी क्या प्रासंगिकता है? पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति के लिहाज से
ये किताब एक चेतावनी है। ये दिखाती है कि कैसे राष्ट्रवाद, सैन्य गठबंधनों पर अंधा भरोसा और संवाद की कमी किसी छोटे से संकट को भी विश्व युद्ध में बदल सकती है। आज भी दुनिया में ऐसी स्थितियां बनती हैं, इसलिए कूटनीति और आपसी समझ का रास्ता कितना जरूरी है, यह हमें याद रखना चाहिए।
बिल्कुल। दूसरा, नेतृत्व के लिए सबक, लीडरशिप। प्रथम विश्व युद्ध के जनरलों की कहानी दिखाती है कि बदलते हालात के साथ न ढल पाना, जमीनी हकीकत से कटे रहना और अपनी गलतियों से न सीखना कितना महंगा पड़ सकता है। और ये सिर्फ सेना के लिए नहीं है, व्यापार हो, राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, लीडर्स के लिए ये एक चेतावनी है। लचीलापन और नई चीजें सीखने की इच्छा कितनी जरूरी है।
सही। तीसरा, जैसा हमने पहले भी कहा, तकनीक का प्रभाव। ये किताब ये सवाल पूछती है कि जब तकनीक हमारी नैतिकता और हमारी रणनीति से आगे निकल जाए तो क्या होता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर युद्ध के जमाने में ये सवाल और भी ज्यादा अहम हो गया है। हमें तकनीक के विकास के साथ साथ उसके सही इस्तेमाल और उसके संभावित खतरों के बारे में लगातार सोचते रहना होगा।
और हाँ, इतिहास को समझना भी जरूरी है। जैसे आपने कहा, मध्य पूर्व में आज जो अस्थिरता है, उसकी जड़ें कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए बंटवारे में है। ओटोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद यूरोपीय ताकतों ने जिस तरह वहां सीमाएं खींची, उसने भविष्य के कई झगड़ों की नींव रखी। इतिहास को समझे बिना हम वर्तमान को पूरी तरह नहीं समझ सकते।
बिल्कुल। तो अगर हम जॉन कीगन की द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से एक सबसे अहम बात लेकर जाना चाहें तो वो क्या होगी? मेरे ख्याल से ये कि ये महायुद्ध 20वीं सदी की सबसे बड़ी मानव जनित त्रासदियों में से एक थी, और ये किसी शैतानी योजना से ज्यादा मानवीय भूलों, गलत फहमियों और नेतृत्व की सामूहिक विफलता का नतीजा थी। ये कोई जरूरी या गौरवशाली युद्ध नहीं था, बल्कि एक रोकी जा सकने वाली आपदा थी।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये कोई अवश्यम्भावी टकराव नहीं था, और ये वो क्षण था जब औद्योगिकरण की जो विनाशकारी ताकत थी वो पहली बार पूरी तरह इंसानियत पर उड़ेली गई। इसने युद्ध के प्रकृति को हमेशा के लिए बदल दिया। कीगन हमें सरल अच्छाई बनाम बुराई वाली कहानियों से आगे बढ़कर इतिहास की जटिलता और उसके दुखद पहलुओं को देखने में मदद करते हैं। ये एक तरह से सभ्यता के अपनी ही बनाई चीजों का शिकार हो जाने की कहानी है।
और यहाँ एक विचार है श्रोताओं के लिए सोचने को जाते जाते। कीगन ने 1914 के नेताओं को नींद में चलने वाले कहा था, स्लीप वॉकर्स। क्या आज की दुनिया में, जहां जानकारी का सैलाब है, तकनीक तेजी से बदल रही है, ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, क्या हम भी किसी तरह की नींद में चलने वाली स्थिति में तो नहीं है? क्या हम अनजाने में किसी बड़े संकट की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? इतिहास हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।